ओम शांति। कर्मयोग से कर्मातीत स्थिति बहुत सुंदर विषय है। आज बाबा ने दो खिलौने हमारे सामने रखे हैं। एक खिलौना जो चाबी भरने से चलता है और दूसरा खिलौना कठपुतली वाला जो श्रीमद की चाबी से चलता है। दोनों खिलौने की चाबी अलग अलग है और हम सभी बाबा के बच्चे भी ये दूसरे वाला खिलौना ज्यादा है, कठपुतली वाला, क्योंकि दिन भर में जो भी हम कर्म करते हैं ये कर्म ही हमें कर्मयोगी भी बनाता है और कर्मातीत स्थिति तक भी पहुंचाता है। वैसे कहा जाता है कि कर्म मनुष्य की पहचान बताता है। कर्म एक ऐसा दर्पण है जो हर इंसान की वास्तविकता का साक्षात्कार कराता है। जब हम बाबा से योग लगाते हैं, अर्थात हम योगी तो है, योगी माना ही बाबा से हमारा प्यार है, बाबा से हमारा संबंध है। लेकिन जब हम कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी का टाइटल बाबा ने दिया, तो कर्म योगी माना खाली बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है ये नहीं, लेकिन पूरे ब्राह्मण परिवार क्या संसार के साथ का भी संबंध है, इसलिए हम कर्मयोगी हैं। कुछ समय पहले बाबा की एक मुरली चली थी कि बच्चे योग लगाने वाले योगी खाली नहीं बनो, योगी जीवन वाले योगी बनो। देहरादून के हमारे परम आदरणीय प्रेम दीदी हमेशा ये बात कहती थी बहनों को कि योग लगाने वाले योगी खाली नहीं बनो, क्योंकि 2 घंटा योग लगाया, 4 घंटा योग लगाया तो बाकी समय किसमें रहे, क्या वियोगी थे? हम तो हमेशा के लिए योगी हैं और इसीलिए हमेशा के लिए 24 घंटे के लिए हम योगी हैं। तो वो योगी जीवन कर्म योग के आधार पर प्रत्यक्ष होता है। आज दुनिया में अगर देखा जाए तो मनुष्य के कर्म बंधन का अनुभव कराता है, बोझ का अनुभव कराता है और भोगना का अनुभव कराता है, और उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं न कहीं देह अभिमान के वश कर्म है, स्वार्थ के वश कर्म है, कुसंग के वश कर्म है या दोष दृष्टि के आधार पर कर्म है। अनेकों में दोष देखते रहना तो दोष दृष्टि के वश कर्म है या कर्मेंद्रिय की अधीनता के कारण कर्म है या पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन या वश कर्म हो रहे हैं। इतनी बातों के आधार पर जो मनुष्य कर्म करता है ये बंधन ही क्रिएट करेगा, बोझ का अनुभव कराएगा और भोगना का अनुभव कराता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी बनने की प्रेरणा दी। अब कर्म योगी किसको कहा जाए? कर्म योगी माना सबसे पहली बात कि जो कहा कि देह अभिमान के वश जो कर्म होता है वो तो बंधन बनता है, लेकिन बाबा ने इसीलिए प्रतिदिन हम बच्चों को मुरली के अंदर यही शिक्षा दी कि बच्चे देही अभिमानी होकर कर्म करो, आत्म अभिमानी स्थिति विकसित करो। जितना देही अभिमानी बनकर कर्म करते जाएंगे तो ही आत्मिक स्थिति हमारी विकसित होगी। देही अभिमानी मतलब कि आत्मा के जो सात गुण है उस गुण स्वरूप होकर कर्म करना, ये है देही अभिमानी स्वरूप। कि जब आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाते हैं और वो सातों गुणों की ऊर्जा, वो शक्ति जब हमारे टोटल कर्म में प्रवाहित होने लगे, हमारे हर कर्म में वो ऊर्जा एक नेचुरल रूप में चलने लगे, तब कहेंगे कि हाँ ये देही अभिमानी है। जिस तरह व्यक्ति देह अभिमान में होता है तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व या हर कर्म में कोई न कोई विकार या कमजोरी प्रवाहित होती है या उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है, कोई न कोई विकारों की ऊर्जा प्रवाहित होती है, कोई न कोई कमजोरियों की ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो कहेंगे कि हाँ ये बंधन बन रहा है, ये बोझ का अनुभव कराता है और वही भोगना का अनुभव भी कराता है। लेकिन कर्म योगी माना ही सातों गुणों की ऊर्जा प्रवाहित हो और तब व्यक्ति हर कर्म करते हुए अपने आप में सहज उस निमित्त भाव को विकसित कर सकता है या हर समय उसके अंदर ये भान रहता है मैं नहीं लेकिन बाबा करण करा बना रहे हैं, तो मैं को रिप्लेस कर दिया बाबा से, वो देही अभिमानी सहज नेचुरल बनाता है। दूसरी बात कि जब कोई न कोई स्वमान को ले लेते हैं सुबह से लेकर के, और वो स्वमान को खाली रिपीट नहीं करते लेकिन उस स्वमान को प्रैक्टिकल महसूस करना हर कर्म करते समय, वो हमें कर्मयोगी बनाता है। बहुत सुंदर ये बात याद आती है कि दादियां हमेशा ये बात कहते थे या अनुभव सुनाते थे कि यज्ञ में जब आरंभ में बहनें अधिक थी भाई कम थे और कोई ऐसा हैवी काम होता था या ऐसा कोई कार्य होता था तो बाबा ने उनके अंदर की ये कमजोरी मिटाने के लिए यही श्रेष्ठ स्वमान दिया था उनको कि मैं चतुर्भुज हूं, और चतुर्भुज हूं माना दोनों संस्कार मेल फीमेल दोनों संस्कार को इमर्ज करते हुए असंभव कार्य भी संभव हो जाता था। तो कहने का भावार्थ है कि उस स्वमान को रिपीट करने से नहीं लेकिन उस स्वमान का स्वरूप बनना, उसको महसूस करना, ये हमें कर्म योगी बनाता है। तीसरी बात कि कर्म योगी बनने का मतलब है कर्मेंद्रिय को अधीन करके, कर्मेंद्रिय के मालिक बन करके उस कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना। किसमें प्रयोग करेंगे? श्रेष्ठ कर्म में प्रयोग करेंगे, दूसरों को सुख देने में प्रयोग करेंगे, या जिसको कहा जाए कि जैसे दधीचि ऋषि का गायन होता है कि भई हड्डी हड्डी स्वाहा कर दिया, जितना हम हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में लगा रहे हैं, ये हड्डी हड्डी हमारी पावन बनती जा रही है। जो दूसरों को तो सुख देती ही है, लेकिन साथ साथ वो हमें भी आंतरिक सुख का अनुभव कराती है। जब कर्मेंद्रिय के अधिकार में आ जाएंगे, अधिकार वाली स्थिति में आ जाएंगे, तो नेचुरल है कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार उस कर्मेंद्रिय को चलायमान नहीं कर सकेगा, विचलित नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोई भी स्वभाव संस्कार अगर कर्मेंद्रिय के द्वारा प्रयोग में आ जाते हैं तो वही खुद को भी कष्ट देते हैं और दूसरों को भी दुख दर्द का अनुभव कराता है। तो जब कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो वो स्वभाव संस्कार ये कर्मेंद्रिय को विचलित नहीं कर सकते, या जिसको कहा जाए जैसे गीता में कहा कि अनासक्त भाव से कर्म करना, कर्मेंद्रिय की आसक्ति में आकर के कर्म करने के बजाय कर्मेंद्रिय में वो अनासक्ति इस तरह से आ जाती है जो हर कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करना, या जिसको कहे हम कि कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर के कर्म करना। बाबा की एक मुरली याद आती है मुझे कि जिसमें बाबा ने कहा था एक कर्म बंधन एक कर्म संबंध। कर्म संबंध का मतलब, कर्म बंधन का तो मतलब समझ लिया हमने कि जब कर्मेंद्रिय पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर के कर्म करती तो वो बंधन बनता है, लेकिन यही कर्मेंद्रियां जब संबंध में आकर के, माना उसको आत्मा के संबंध में आकर के वो प्रयोग में आती है, तब कहेंगे कि हाँ कर्म संबंध जो दुख को अनुभव नहीं कराता है, कष्ट को अनुभव नहीं कराता है, लेकिन उससे न्यारा होने की फीलिंग आती है। इसलिए कहा कर्मेंद्रिय को खाली मालिक बनकर नहीं, अनासक्त भाव होकर सेवा भावना के साथ उसको प्रयोग करना, या स्वार्थ भाव होता है या सेवा भाव होता है। तो जब सेवा भाव के रूप में उन कर्मेंद्रिय को हम प्रयोग करते हैं तो स्वार्थ समाप्त हो गया, या हिसाब समाप्त हो गया कि भाई दुनिया में जैसे भाई किसी ने इतना किया तो उसके रिटर्न में अपेक्षा रहती है, वो अपेक्षा हमारी बाबा ने समाप्त कर दी, क्योंकि उससे कई गुना अधिक हमारा जमा हो जाता है। और प्राप्ति का अनुभव स्वयं बाबा करा देता है हमें, तो हमें कोई व्यक्तियों से स्वार्थ की मतलब की भावना आती ही नहीं है। उसको कहेंगे कि हाँ यथार्थ कर्म योगी है। चौथी बात कि कर्म योगी बनना मतलब योगयुक्त होकर के हर कर्म करना, योगयुक्त होकर के कर्म करना। योगयुक्त होने का मतलब है दिव्य बुद्धि युक्त होकर कर्म करना। जहां हम दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो ज्ञान युक्त समझ बाबा ने हमें दी है हर कर्म करते समय, या विवेक जो हमें बाबा ने एक दिव्य विवेक जो दिया है, वो दिव्य विवेक का उपयोग करना, जिसको आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि कॉमन सेंस के आधार पर करना, लेकिन कॉमन सेंस बात अलग हो जाती है। बाबा ने हमें उससे भी अधिक आगे की बात बताई कि दिव्य बुद्धि माना हर कर्म के अंदर जैसे विशेष वो बात हो जो किसी को भी प्रेरणा दे सकती हो, यह कैसा आदर्श हमें बना दे उस दिव्य बुद्धि युक्त होकर के जब हम कर्म करते हैं तब, कि होता भले साधारण कर्म है लेकिन उसमें भी जैसे कुछ विशेष नजर आता है। जैसे दादियों के कर्म में हम देखते थे, या दादियां जब मम्मा बाबा की पालना का वर्णन करते थे, साधारण सी बातें होती थी लेकिन वो साधारण कर्म में भी विशेष हो जाता था। इसलिए कहा कि दिव्य बुद्धि का प्रयोग करना, वो जो हमें आध्यात्मिक विवेक मिला है उस आध्यात्मिक विवेक का प्रयोग करना, उसको कहते हैं योगयुक्त होकर कर्म करना। जहां हमारा वो साधारण कर्म भी यादगार बन जाए, किसी के जीवन में यादगार बन जाए, वो हमेशा उसमें से उसी बात को याद करते हुए उसमें से जैसे शक्ति प्राप्त होती हो ऐसा महसूस करते हैं, या जिसको कहा जाए कि श्रीमत का हाथ पकड़ करके कर्म करना। योगयुक्त होकर के कर्म करने का मतलब है कि जहां हम श्रीमत का हाथ हर वक्त पकड़ते हुए उसके आधार पर हम एक नेचुरल कर्म करना आरंभ कर दे और इतना स्वाभाविक रीति से आ जाए जीवन में कि हमें ये भी नहीं सोचना पड़ता है कि हाँ ये कर्म श्रीमत के आधार पर है या नहीं है। ऐसे श्रीमत को हमने जीवन के अंदर अपने बुद्धि से उसको पकड़ा हुआ हो, क्योंकि जहां श्रीमत का हाथ होता है तो हर बात के लिए जैसे बाबा कहते हैं मैं जवाबदार हो जाता हूं। तो कितना भी कार्य करने के बाद भी हल्केपन का अनुभव होता है, या हर कर्म में बल भरता है, कर्म बल, अंदर से वो शक्ति का अनुभव होता है। जिसके लिए बाबा ने अपने लास्ट स्टेज में कहा था, जब गुलजार दादी बाबा को भोग लगा करके संदेश ले आए, तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा आपकी अंतिम समय की अवस्था कैसी थी, ये सब बच्चे जानना चाहते हैं। तो उस समय बाबा ने कहा एक युद्ध था, कर्म योग और कर्म भोग का। लेकिन धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पर ढीले हो गए और कर्म योग विजयी हो गया। तो जहां श्रीमत के आधार पर हमारा हर कर्म हो, वो इतनी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि उस कर्म में श्रीमत के साथ साथ और भी बल समाये होते हैं। कौन से बल समाये होते हैं? पवित्रता का बल समाया होता है, शांति से हर कर्म करते हैं तो शांति का भी बल उसमें समाया होता है, निश्चय का बल उसमें समाया होता है। ये सारे बल है, बल भी कितने हैं? तो निश्चय का बल है, पवित्रता का बल है, शांति का बल है, जो उसके साथ साथ जुड़ जाता है। और इसीलिए ये हर कर्म हमें भीतर से शक्ति प्रदान करता है, ये कर्म योग की शक्ति है। जो कैसी भी भोगना की शक्ति हो, उसके ऊपर हमें विजयी होने का अनुभव कराती है। यानी जैसे बाबा ने कहा कि भोगना दर्द पहुंचाने का काम कर रहा था, दर्द महसूस कराने का कार्य जैसे कर रहा था, उसका फुल फोर्स था। अब नेचुरल है, जैसे दुनिया में किसी को हार्ट अटैक आता है तो कैसे पसीना छूट जाता है एकदम, और जैसे तड़पता है सांस लेने के लिए, क्योंकि हार्ट में जैसे वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता है, तो कितना जैसे उनको कष्ट महसूस होता है। लेकिन बाबा कहे कि वो कर्म भोगना दर्द पहुंचाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कर्म योग की शक्ति ऐसी थी जो उस दर्द को महसूस भी नहीं कराने दे रहा था, उसको हटा रहा था सहजता से। और इसीलिए कर्म योग विजयी हो गया, कर्म भोग वो दर्द भी नहीं पहुंचा सका। तो उस लड़ाई के अंदर कैसे कर्म योग की विजयी हुई। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को भी ऐसे कर्म योगी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कर्म तो छोड़ना नहीं अंत घड़ी तक हमें। अभी तो फिर भी भट्टी करने का समय मिल जाता है, लेकिन आगे चल के तो शायद स्वयं के लिए टाइम ही नहीं होगा। लेकिन ये चीजें जो है, यही हमें उस समय मदद करेगी। जिस तरह ब्रह्मा बाबा भी अंत घड़ी तक कर्म योगी बन करके रहा, बड़ी दादी को भी हम सभी ने देखा कि कोई खास जाकर के बस अमृत वेले दादी पावरफुल रीति से योग करते थे, लेकिन दिन भर में दादी को खास बाबा के कमरे में जाकर के बैठने का समय मिले या योग भट्टी करने का समय मिले, ऐसा कहां था। लेकिन फिर भी कितना श्रेष्ठ योगी के जिनके नैनों से ही दादी का वो फोटो देखते हैं, हमेशा सामने आता है कि दादी जब योग में मुरली सुनाने से पहले जब योग में भी दृष्टि देती थी, तो वो दृष्टि की एकाग्रता भी कितनी जबरदस्त थी। और यही दादी का कर्म योग जो है, वो हमें सिखाता है कि हम सभी भी ऐसे कर्म योगी है कि जिस कर्म योग के माध्यम से कोई त्रुटि नहीं, कर्म में कोई त्रुटि नहीं, अगर सचमुच यथार्थ रूप में हम कर्म योगी है, तो उस कर्म में न कोई मिस्टेक होती है, न कोई त्रुटि होती है, न कोई हमें कहने वाला होता है कि ये कर्म तुमने ठीक नहीं किया, परफेक्ट होता है। ये उसकी निशानी है कि उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं होती है। जैसे वो बाबा की बात सुनाते हैं कि एक बार दिल्ली में बाबा रजौरी में गए थे और रोज सुबह बाबा क्लास कराते थे, तो उस समय तो सेंटर्स बहुत कम होते थे, तो दूर दूर से जी बस पकड़ करके भी जो भाई बहने थे वो पहुंच जाते थे सुबह के क्लास में। दो माताएं आती थी, हमेशा पहला नंबर बैठती थी, पहुंच जाती थी, बिफोर टाइम पहुंच जाती थी, क्योंकि उनकी बस ऐसी थी। तो बाबा जब तक क्लास में आए तब तक दोनों माताएं सामने बैठी होती थी। तो एक बार जब बाबा क्लास कराने पहुंचे तो देखा तो वो दोनों माताएं थी नहीं, उनकी सीट खाली पड़ी थी। खैर बाबा ने कोई संकल्प तो नहीं चलाया, लेकिन जैसे ही क्लास पूरा होकर के बाहर आए तो वो दोनों माताएं दौड़ दौड़ करके आ रही थी। तो बाबा ने पूछा, बच्ची क्या हुआ इस समय आ रही, क्लास तो पूरा हो गया। कहा, हाँ बाबा, हम बस में बैठे थे ना, आपको याद कर रहे थे तो बस स्टॉप कब चला गया ना पता ही नहीं चला। तो बाबा ने कहा कि अगर बाबा की याद होती थी ना तो बस स्टॉप जाता ही नहीं था। भावार्थ बाबा का ये था कि बाबा की याद जहां है जिस कर्म में, वो कर्म में कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है, कोई कमी आ ही नहीं सकती है। वो कर्म इतना परफेक्ट होगा कि कोई उसमें से गलती निकाले ये हो ही नहीं सकता है। ये है कर्म योगी, जो दूसरों को भी सुख देता है और खुद को भी आंतरिक सुख का, आंतरिक सेटिस्फेक्शन का अनुभव कराता है, एक जैसे आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है, उसको कहते हैं कर्म योग। वो कर्म बल जमा हो रहा है और ऐसे जब कर्म योगी बन करके जो कर्म करते हैं हम, उसमें अनेकों को प्रेरणा भी मिलती है, या जिसको कहा जाता है कि अनेकों के लिए हम आदर्श बन जाते हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर जो भी महान हस्तियां हो गई, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे ब्रह्मा बाबा दादियां हो, चाहे मदर टेरेसा हो, लोगों के लिए जैसे आदर्श, आज भी कई लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं जीवन के लिए, थे सबके बीच में ही, लेकिन सबके बीच में होने के बावजूद भी, या पैदा हुए थे साधारण घर में ही, मीडियम क्लास में ही पैदा हुए थे ये सभी महान हस्तियां, लेकिन फिर भी वो कितने हजारों लोगों के लिए आज भी, माना इतने सालों के बाद भी, आज 150 साल के बाद भी स्वामी विवेकानंद कई यंगस्टर्स के लिए आदर्श हो रहे हैं। उनको लोग आज भी उस रूप में देखते हैं, आदर्श के रूप में देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को आज भी लोग आदर्श के रूप में देखते हैं। तो ऐसी क्या विशिष्टता थी उसके अंदर, उनके कर्म के अंदर, कि फिर भी लोग उनके एक एक कर्म को जैसे एक एक चरित्र के रूप में याद कर रहे हैं। इसलिए कहा कि कर्म योगी माना हर कर्म का चरित्र, जैसे श्री कृष्ण के लीलाएं दिखाते हैं, उसका हर कर्म एक चरित्र के रूप में दर्शाया है। अगर गलतियां भी की तो भी उसको लीलाएं समझे लोगों ने भक्ति में। आज भी अगर हम कहने भी जाए किसी को कि भाई श्री कृष्ण के ये भाई वस्त्र हरण करने ये कोई अच्छा चरित्र है क्या, बोले नहीं नहीं आपको पता नहीं है? मतलब उस बात को वो बोलने नहीं देंगे हमको, नहीं उनके चरित्र थे ये लीलाएं थी। इस तरह की जैसे भावना ऐसे हमारे हर, क्योंकि ऐसे क्वालिटीज थी, उस क्वालिटीज में आकर के कर्म किए उन्होंने, वो सद्गुण हर कर्म में जैसे प्रत्यक्ष नजर आते थे। इसलिए बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि हमारी धारणाएं या ये सब महान हस्तियों के जीवन की धारणाएं इतनी ऊंची थी तभी वो अनेकों के लिए आदर्श बने। तो ऐसे जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जो धारणाएं नियम मर्यादाएं दी है, ये नियम मर्यादाओं के ऊपर जब एक्यूरेट हम चलते हैं तो नेचुरल है कि हम आदर्श ही बनते जाते हैं। उसमें हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर होती है कि बाबा जैसे हर वक्त हमें राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसको टच करता है और हम राइट के तरफ ही आगे बढ़ेंगे। जैसे बाबा की एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे अब माया का वो स्वरूप सामने आएगा, आने वाले समय में वो स्वरूप सामने आएगा रॉयल रूप माया का, जो रॉन्ग को भी राइट समझेंगे और कर्म का आचरण करेंगे, लेकिन जो दूसरे डिटैच होकर के देख रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा ये रॉन्ग है क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन अब आने वाले समय में माया का ये स्वरूप सामने आने वाला है जो रॉन्ग को राइट समझ करके प्रैक्टिकल कर्म में आएंगे, और उस समय माया ऐसा धोखा दे देंगी जो समझ में भी नहीं आएगा कि माया का धोखा है। इसलिए कितना सावधान रहने की आवश्यकता है कि हर समय बाबा की वो श्रीमत का मीटर सामने रखते हुए चेक करते रहना पड़ेगा कि बाबा की श्रीमत के हिसाब से है ना, ये कहीं कोई मर्यादा के विरुद्ध हमें नहीं ले जा रहा है, कोई गफलत तो नहीं हो रही है, तब कहेंगे कि हाँ ये कर्म योगी है, एक नेचुरल कर्म योगी। यानी अंत तक यही हम चाहेंगे हर कोई कि बाबा बुद्धि इतनी सलामत रहे हमारी कि अंत तक भी कोई भी माया के रॉयल रूप को हम राइट समझ करके उसको प्रैक्टिकल कर्म में न ले आए, क्योंकि अब समय के हिसाब से एक का अगर अनेक गुना बनता है तो अब लास्ट समय जो चल रहा है उसके हिसाब से हम उस अनेकों में अनेक वाला हिसाब बनाना ये समझदारी तो नहीं कहेंगे। इसलिए श्रेष्ठ कर्म में एक का अनेक गुना हो ये बात अलग है, वो जमा का खाता हमारा बनाएगा। तो कर्म योगी माना जिसके हाथ भरपूर हो, जिसके जमा के खाते इतने भरपूर हो, है ना, जमा के खाते भरपूर होना चाहिए, तब हर क्षण वो भाग्य महसूस कराता रहेगा। नहीं तो अगर कोई सामने से भी भाग्य दे दे ना तो भी उस भाग्य से वंचित हो जाएंगे। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था, जैसे घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं, तो कहा जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों जा रहे थे, देखा कि ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि भाई अपने राज्य में भी कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी समय ब्राह्मण को बुला करके कहा कि भाई इसको एक थैली भर के सोना मोहर दे देते हैं, उसके पास था ही, तो उसने दे दिया। कृष्ण देख करके मुस्कुरा रहा है कि दे तो दिया लेकिन भाग्य में भी तो होना चाहिए। क्या श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा जाता है थोड़े दूर गया तो थैली देखी तो एक लुटेरे ने उसको लूट लिया। जब लूट लिया अब क्या करता, तो फिर दूसरे दिन भिक्षा मांग रहा था। दोनों ने फिर देखा, कृष्ण ने और अर्जुन ने फिर देखा कि भिक्षा मांग रहा था, कल इतना थैली भर के उसको सोना मोहर दे दिया फिर भी भिक्षा मांग रहा है। पूछा उसको क्यों भिक्षा मांग रहा है, कल तो तेरे को एक थैली भर के सोना मोहर दे दिया, तो कहा वो तो लुटेरे ले गए क्या करता है। तो उसने अपनी अंगूठी दिया जिसमें एक बहुत कीमती ये मोती लगा हुआ था, बेश कीमती मोती था, दिया उसको मोती कि ये ले, इसको बेचेगा ना तो भी तेरा सहजता से सब ठीक हो जाएगा। कहा ठीक है, बड़े खुशी से ले गया वो मोती घर में। तो उसकी वाइफ कहीं गई हुई थी बाहर पानी लाने के लिए नदी से, तो उसने सोचा कहाँ रखूं इसको, कहाँ छुपाऊं, कोई लुटेरे न ले जाए सोच करके, तो एक पुराना घड़ा था उसमें उसने रख दिया कि भई ये घड़ा तो काम आता ही नहीं है, रख दिया उसके अंदर। अब जाकर के वो सो गया, इतने में उसकी वाइफ आई कि उसका पानी वाला घड़ा ही टूट गया था, तो सोचा अभी पुराना घड़ा है वही ले लेती हूँ और पानी भर के ले आती हूँ। वो घड़ा लेके चली गई नदी में, जैसे ही डुबोया तो वो मोती बह गया। फिर जैसे आई उसने देखा, अरे ये तो पुराना घड़ा, तो कहाँ गया वो मोती। कहा मुझे क्या मालूम, इसमें कोई मोती बोती नहीं। बोले मैंने मोती रखा था इसके अंदर, बहुत कीमती मोती दिया हुआ था मुझे, कि जिसको बेचने से ही हमारे दिन फिर जाए। तो कहा वो तो चला गया, बह गया होगा अभी नदी में, मैंने जैसे ही डाला अंदर में। तो फिर तीसरे दिन भिक्षा मांगने गया, तो जब उसको पूछा भाई क्या हुआ वो मोती का क्या हुआ अभी, तो कहे इस तरह मोती भी बह गया पानी में, क्या करे, आपने तो दिया लेकिन मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में ही नहीं था, तो क्या करूं। तो कृष्ण ने कहा कि अभी मैं देता हूं उसको, तुम नहीं दो कुछ भी। उसको दो पैसे दिए, उस जमाने के दो पैसे तो काफी होते हैं, दो पैसे दिए उसको और कहा ये ले जा। तो वो बेचारा ब्राह्मण बार बार सोचता रहे, इसे तो अर्जुन अच्छा, हाँ भगवान होते मेरे को खाली दो पैसा दिया, अर्जुन अच्छा इसे तो के थैली दिया मोती दिया, भगवान होकर खाली दो पैसा दे रहा है। दो पैसा लेकर के जा रहा था, उतने में देखा कि एक मछुआरा जो है मच्छी पकड़ कर खा रहा है, तो उसको कहा क्यों ये कष्ट कर रहा है। बोले भोजन करना। बोले ये ले दो पैसा, इस मछली को मुक्त कर दे तू। तो मुक्त कर देने के लिए भाई पानी अभी नहीं तो तड़प के मर जाएंगी, तो उसके पास कमंडल था, तो कहा इसी में डाल दो मैं उसको नदी में छोड़ के आता हूँ। डाला तो उतने में वो मोती निकल आया कमंडल में। तो मोती निकल करके आ गया, नथ छोड़ दिया और मोती उसको वापस मिल गया। जब मोती वापस मिल गया तो इतना खुशी में नाचने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया करके। उतने में वो लुटेरा वहां से जा रहा था, उसको लगा कि ये मेरे को पहचान गया कि मैंने ही उसकी थैली लूटी थी। बोले मिल गया मिल गया मिल गया। तो कहा कि भाई तुम ऐसा काम कर, मेरी शिकायत नहीं करना, मुझे कोई राजा के पास नहीं ले जाना, ले तेरी थैली वापस तेरे को करता। जब भाग्य उदय हुआ तो दोनों प्राप्त हुआ। फिर वो जाता है और भगवान से पूछता है, श्री कृष्ण से ही पूछता है कि मेरे को जब अर्जुन ने इतनी कीमती चीज दिया तो भी मेरे भाग्य में नहीं थी, आपने दो पैसा दिया उससे सब कुछ वापस कैसे आ गया। तो कहा जब उसने इतनी कीमती चीज दी तो तुम्हारे अंदर वो स्वार्थ भावना है कि मैं अपने लिए इसको कैसे यूज करूं, ये भाव था। लेकिन जब मैंने दो पैसा दिया तब तुमने सेवा अर्थ, उस मछली को मुक्त करने के भाव से, उस सेवा के लिए उसका स्वयं के प्रति यूज करने का कभी ख्याल नहीं आया तुमको। तो जब हम भी सेवा करते हैं दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे का भी कल्याण हो जाए ये भावना से जब सेवा करते हैं, अनेकों के कल्याण के हिसाब से, उद्धार के हिसाब से सेवा करने का सोचते हैं, वो कर्म हमें भाग्य प्रदान करता है, अनेक गुना ऊपर उठाता है। कोई भी कर्म जब हम स्वयं के मतलब से करेंगे, मुझे प्राप्ति हो उस मतलब से करेंगे, तो वो कभी भाग्य प्राप्त नहीं कराएगा। इसीलिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बच्चे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना को प्रवाहित होने दो। जो बाबा ने हम बच्चों को मनसा सेवा के लिए भी कहा है, या जो लोक कल्याण अर्थ आज जो भी सेवा हम कर रहे हैं, यही भाग्य प्रदान करता है। आज गृहस्थी लोगों का भाग्य दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो भाग्य बनता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर हमेशा यही स्वार्थ होता है कि मेरे परिवार को या मुझे इसमें क्या प्राप्ति होनी चाहिए, क्या फायदा होना चाहिए, ये जहां भाव है तो वो कभी भी उनको सुख प्रदान नहीं करता है, वो भाग्य अनुभव होने नहीं देता है। इसीलिए हमारे हर संकल्प, हमारा हर कर्म, हमारी वाणी या हमारी भावनाएं, सूक्ष्म वृत्तियों में भी जब दूसरे के प्रति कल्याण की भावना से उसको हम प्रयोग में लाएंगे, तब यथार्थ कर्म योगी हम बनेंगे और तब वो मैंपन की फीलिंग समाप्त हो जाती है। अनेकों के कल्याण के लिए, अनेकों को फायदा हो, ये शुभ भावना रख करके जब हम करते तो ये हमारे बंधन को भी तोड़ता है, ये हमारे बोझ को भी खत्म करता है और हमारी भोगनाओं को भी समाप्त करता है। ये तीनों को एक साथ में अगर खत्म करता है तो यही है कि जब हम सर्व के कल्याण अर्थ, हमारे जो भी समय संकल्प शक्तियां यूज करते हैं तब हमें उसका भाग्य अनुभव होने लगता है। और ये बाबा की विधि जो बताई हुई है कर्म योगी बनने की, ये योगी जीवन नेचुरल रूप में बनाता है और नेचुरल हमें इतना ऊंचा उठाता है कि हर कर्म में हमें सहज ही ये महसूसता होती है कि हाँ, हम कर्मातीत स्थिति की ओर जा रहे हैं। जो कहा कि ये कर्म योगी से कर्मातीत स्थिति कैसे बनती है, कर्मातीत का मतलब ये नहीं कि कर्म का कोई लेपछेप न लगे, लेकिन कर्मातीत माना ही हर कर्म का जो प्रभाव है उस प्रभाव से स्वयं को ऊपर उठा देना, फ्री कर देना। जितना उससे ऊपर उठते जाएंगे, मुझे प्राप्त हो या किसी और को प्राप्त, उस फीलिंग से भी ऊपर उठ जाना, उसको कहते हैं एक नेचुरल कर्मातीत स्थिति। कर्म कर रहे हैं लेकिन कोई भी कर्म बंधन का अनुभव न कराए, हमें बांधे नहीं, या हमारे बुद्धि योग को नीचे नहीं ले आए, लेकिन नेचुरल जैसे आनंद से कर्म जो करे वो हमें खुशी प्रदान करे, आनंद की अनुभूति करे। जितनी आनंद की अनुभूति होगी उस कर्म में, उतना ही हल्कापन महसूस होगा और उसी को ही कर्मातीत स्थिति कहेंगे। अगर कर्म करते हुए मुझे आनंद नहीं मिल रहा है या आनंद की स्थिति में हम कर्म नहीं कर रहे हैं, खुशी से कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अंदर में अनेक प्रकार के व्यर्थ चला रहे हैं, तो ये योग युक्त तो नहीं हुआ। योग युक्त तो माना ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हुए कर्म करना। जितना सकारात्मक मनस्थिति को लेकर के हम कर्म करते हैं तब वो हमें हल्का करेगा अंदर, एकदम हल्का होकर के, न्यारा होकर के हम आनंद की स्थिति में खुशी से वो कर्म करते हैं, लाइट रहते हैं और हमारे कर्म में दूसरों को भी एक लाइटनेस की फीलिंग आए, हमारे वाइब्रेशन से भी वो लाइटनेस की फीलिंग आए, तब कहेंगे कि हाँ ये कर्मातीत स्थिति की ओर। जैसे बाबा के सामने जाते थे, जब बाबा लास्ट दिनों में उस कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो गए थे, तो दादियां यही कहते कि बाबा के पास जाते थे यही सोच करके कि बाबा को ये बात सुनानी है, इसकी बात सुनानी है, उसकी बात सुनानी है, ये सेवा की बातें सुनानी है, ये समस्या के बारे में सुनाना है, लेकिन बाबा के सामने जाते ही सब भूल जाते थे। कहने का भावार्थ कि हमारे वाइब्रेशन भी ऐसे हो कि कोई अगर परचिंतन करने के हिसाब से हमारे पास आए भी वो भूल जाए, वो समाप्त हो जाए, ये नहीं कि वो हमें भी उस संग में इंक्लूड कर दे, तो माना हम कर्म योगी भी नहीं है, कर्मातीत तो बहुत दूर, कर्म योगी भी नहीं बने हैं। अगर वो हमें उस संग में इन्फ्लुएंस कर दे तो हम कर्म योगी कहां हुए, क्योंकि हिसाब बना ना, किसी की भी परचिंतन की बातों में अगर हम आ गए तो क्या हुआ, हिसाब बना, सूक्ष्म में हिसाब तो बनता ही है। तो इसीलिए वो हमारे पास आए कहने के लिए और वो भूल जाए, कैसी स्थिति होगी। इमेजिन करो कि कोई परचिंतन की बात लेकर के आए आपके पास में और वो स्वयं भूल जाए कि मैं किस लिए आए, तब कहेंगे कि हाँ हम कर्मातीत स्थिति के नजदीक जा रहे हैं। ये बाबा हम बच्चों से अभी चाहते हैं कि हाँ बच्चे अभी ऐसी स्थिति आपकी बन जाए कि दुनिया के लोग क्या, गृहस्थी लोग क्या, वो भी आए आपके पास में कोई बात सुनाने, अपना प्रॉब्लम सुनाने, और वो इतने हल्के महसूस करे अपने आप में कि वो अपनी बात भूल जाए। ये अभी समय अनुसार हमारी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अब तो जैसे बाबा ने कहा कि महामारी एक बात है। आज सवेरे सवेरे किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे एक लिखत भेजी कि आज मास्क लगाने में कितना तकलीफ हो रही है सबको, नहीं मास्क वाला जीवन हो गया है कि मास्क लगाते भाई लगाना ही है और लगाना ही है, और कई बार सफोकेशन महसूस होता है। ये मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन जो इनविजिबल मास्क हम पहन करके चल रहे हैं, देह अभिमान का कहो या अनेक प्रकार के अभी भी कुछ कमजोरियों का मास्क पहनकर चल रहे हैं, क्या उससे हमें सफोकेशन नहीं हो रहा है, आत्मा को सफोकेशन नहीं हो रहा है। आवश्यकता है कि उस मास्क को भी हम निकाल दें। ये मास्क हमें हर वक्त ये याद दिलाए कि जो हमने अनेक प्रकार की अभी तक जो कमजोरियों को पाल के रखा है और वो मास्क पहन करके हम चल रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, आवश्यकता है कि जो आत्मा को सफोकेट कर रही है उस सफोकेशन से भी हम अपने आप को मुक्त करें। क्योंकि ये अंदर में, जैसे अभी किसी ने रिसर्च किया और बताया कि मास्क पहनने से भी क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो वायरस निकल नहीं पाते हैं, वो वायरस अंदर ही रहते हैं, खास करके जो N95 का जो मास्क होता है तो अंदर ही रहता है, और वो वायरस वापस जब ब्रीदिंग में जाता है तो कोई नई बीमारी शुरू हुई है। आप लोग ने सुना हुआ होगा कि वो नई बीमारी शुरू हुई है और उससे भी कितनी तकलीफ लोगों को हो रही है। भावार्थ ये कि आज हम भी जो कमजोरियों का मास्क पहन करके अभी तक भी अगर समय के हिसाब से चल रहे हैं तो ये हमें ही कितनी तकलीफ महसूस कराएगा, इसका शायद हमें ख्याल में भी नहीं, लेकिन नेचुरल है कि हमारा योग लगने नहीं देगा, हमें अंदर घुटन महसूस कराएगा, अनेक प्रकार से खुशी हमारी गायब करेगा, आत्मसंतुष्टि की अनुभूति नहीं होने देगा, तो फायदा क्या? तो उस मास्क को भी अब निकाल दे। ये मास्क पहनते हर वक्त वो याद रहे कि वो जो सूक्ष्म में कमजोरियों वाला मास्क हमने पहना है और जिसके माध्यम से हम कर्म में आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार की नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, उस मास्क को भी निकाल करके फेंकना है, क्योंकि ये मास्क वैसे ही अच्छा नहीं है, है ना? बहुत सुंदर ये बात आज सुबह सुबह में पढ़ी मैंने, तो किसी ने मैसेज भेजा था, मैंने कहा कितनी एक्यूरेट बात है, और सचमुच वो हमें यथार्थ रूप में कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसीलिए कर्म योगी तो हमें है, हम है ही और अंत तक हमें रहना ही है, लेकिन यही कर्म योगी के स्थिति से ही उस कर्मातीत स्थिति तक भी पहुंच जाना है। तो ये विभिन्न बातें जो विशेष आज चिंतन में आई आप सबके साथ शेयर किया। अच्छा, ओम शांति।
में हैं।
श्रेष्ठ योगी हूं। आदर्श कर्म योगी हूं। कर्म मेरा दर्पण है। जो मेरी वास्तविक स्थिति का कर्म ही हमारे वास्तविकता की पहचान है। हर कर्म देही अभिमानी स्थिति में करते जाना है। मैं आत्मा सत्वगुणी स्वरूप और ये सातों गुणों की ऊर्जा हर कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म में प्रवाहित करना है। कि सातों गुणों की ऊर्जा ऐसा सुंदर दिव्य प्रभा मंडल को विकसित ये प्रभा मंडल मेरे लिए कवच है, जिस कवच में मैं सदा सुरक्षित हूं। ये प्रभा मंडल हर परिस्थिति में हर घटना में मुझे सेफ रखता है। कोई भी परिस्थिति मेरे लिए उन्नति का आधार बन जाती है। श्रेष्ठ कर्म का बल मुझ आत्मा में शक्ति का संचार करता है। और मुझे भीतर से परमात्मा की श्रीमत का हाथ पकड़कर हर कर्म करते चलना है। जिससे हल्कापन का अनुभव होता है, यही श्रीमत मुझे अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त करता है। के श्रेष्ठ कर्म। मेरे जीवन को आदर्श बनाता है। मुझ में जमा के खाते को कर्म योगी बनकर जब हर कर्म करते हैं तो मेरी हर कर्मेंद्रियां पावन बनती जा रही है, शुद्ध होती जा रही है। संतुष्टि का अनुभव कराती है। कितनी न सौभाग्यशाली हूं जो कल्प के अंत में श्रेष्ठ संगम के समय पर बाबा ने मुझे श्रेष्ठ कर्म की कला सिखाई है। हल्कापन महसूस कराता है। जितना जितना हर कर्म में निस्वार्थ प्रेम की ऊर्जा भरते हैं श्रेष्ठ कर्म से
की दुआएं प्राप्त कर सकती हो और मेरे जमा के खाते को भरपूर कर सकती हो। मैं और मेरा बाबा हर कर्म करते समय इसी कंबाइन स्वरूप का अनुभव करते मेरे कर्म में कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं, हमें कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ बना देता बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़कर हर कर्म करने से बाबा करावनहार बन जाता है। बाबा करण करावनहार मुझसे कराता है। इसी कर्मयोगी स्थिति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। यही कर्मयोग जीवन बंधन से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराता है।
आया है